रोबिन शर्मा द्वारा रचित पुस्तक कौन रोएगा आपकी मृत्यु पर। अध्याय एक, अपना लक्ष्य खोजिए। जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे पिता ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जो मैं कभी नहीं भूल सकता। बेटा, तुम जब पैदा हुए तो तुम रोए जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए जबकि तुम जश्न मनाओ। हम उस काल में जी रहे हैं जहां हम जीवन का अर्थ भूल गए हैं। हम बहुत आसानी से इंसान को चंद्रमा पर भेज रहे हैं, पर हमारे लिए सड़क पार करके अपने पड़ोसी से मिलना मुश्किल हो रहा है। हम एक बारूदी मिसाइल को बिना किसी चूक के दुनिया के आर पार दाग सकते हैं, परंतु अपने बच्चों को पुस्तकालय ले जाने का समय निकालने से चूक जाते हैं। हमारे पास ईमेल, फैक्स मशीन और डिजिटल फ़ोन जैसे साधन हैं जिनके द्वारा हम बहुत आसानी से जुड़े रह सकते हैं। फिर भी हम उस वक्त में रह रहे हैं जिसमें हम आपस में सबसे कम जुड़े हुए हैं। हमने अपनी मानवता को खो दिया है। हम जीवन का उद्देश्य भूल गए हैं। हमने जीवन की सबसे अहम बातों को विस्मृत कर दिया है। और जब आप यह पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं, मैं आदरपूर्वक आपसे पूछना चाहूँगा कि ऐसा कौन है जो आपकी मौत के बाद रोने वाला है। आप कितने जीवन पर अपनी छाप डालेंगे जबकि आपको इस ग्रह पर चलने का मौका मिला है। आने वाले पीढ़ियों पर आपके जीवन का क्या असर होगा। और आपने अपने अंतिम पड़ाव में पहले क्या धरोहर छोड़ी। एक सीख जो मैंने अपने जीवन से ली है वह यह है कि अगर हम अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में नहीं लेते हैं तो जीवन हमें नियंत्रित करने लगता है। दिन हफ्तों में बीत जाते हैं, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। सब कुछ इतना जल्दी ख़त्म हो जाता है कि हम सिर्फ जीवन को पूर्णता के साथ न जी पाने का अफसोस करते रह जाते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के मृत्यु शैया पर उनसे पूछा गया, अगर आपको यह जीवन दोबारा जीने का मौका दिया जाए तो आप क्या करेंगे। उन्होंने एक लंबी सांस लेकर कहा, मैं वह इंसान बनना चाहूँगा जो मैं बन सकता था परंतु नहीं बना। आपके साथ भी ऐसा न हो इसलिए मैं यह किताब लिख रहा हूँ। एक व्यावसायिक वक्ता होने के नाते मैं अपने काम के सिलसिले में अपना अधिकतर समय उत्तर अमेरिका के पार अपने भाषणों और सम्मेलनों में व्यतीत करता हूँ। एक शहर से दूसरे शहर में व्यवसाय की दुनिया में नायकत्व के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि और विचारों को विभिन्न लोगों में बांटता हूँ। हालांकि वे लोग जीवन के अलग अलग रास्तों से आते हैं, परंतु घूम फिर कर प्रश्न सिर्फ एक बात पर केंद्रित करते हैं कि वे किस प्रकार अपने जीवन को बेहतर ढंग से रूपांतरित कर सकते हैं, किस प्रकार वे अपने कार्य द्वारा एक स्थायी सहयोग प्रदान कर सकते हैं। और इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, वे अपने जीवन के सफर को आसान बनाकर उसका आनंद ले सके। मेरा उत्तर हमेशा इसी तरह शुरू होता है कि अपना लक्ष्य ढूंढिए। मुझे विश्वास है कि सब में विशिष्ट गुण होते हैं जो इस इंतजार में रहते हैं कि उनको किसी उचित उद्देश्य में उपयोग किया जाए। हम सब यहाँ किसी अनूठे लक्ष्य के लिए हैं, एक ऐसा महान उद्देश्य जो हमें अपनी मानवता के सर्वोच्च गुण को उजागर करने में मदद कर सके और साथ ही हमारे आसपास के लोगों के जीवन में कुछ अर्थ जोड़ सके। अपने लक्ष्य को खोजने का यह मतलब नहीं कि आप वर्तमान के कार्य को छोड़ दें। इसका अत्यंत सरल मायने यह है कि आपने कि आपको अपने काम में उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो आप सबसे बढ़िया तरीके से कर सके और अपनी छाप छोड़ सके। इसका मतलब है कि आपको जिस परिवर्तन की आशा है उसे वास्तविक रूप देने के लिए दूसरे लोगों की प्रतीक्षा न करें, और जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, उस बदलाव को स्वयं में लाने की कोशिश करिए जो दुनिया में देखना चाहते हैं, और जैसे ही आप यह करेंगे तो जीवन बदल जाएगा। धन्यवाद। अध्याय 2। प्रतिदिन किसी एक अजनबी पर उपकार कीजिए। अपनी मृत्यु शैया पर एल्डर्स हक्सले ने पूरे जीवन की शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त किए और उसका सार सिर्फ इन शब्दों में दिया, हमें एक दूसरे के लिए दया भाव रखना चाहिए। बहुत बार हम सोचते हैं कि एक परिपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें कुछ महान कार्य या शानदार अभियान करना चाहिए जो हमारा नाम अखबारों और पत्रिकाओं के मुख्य पृष्ठों पर ला सके। सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एक अर्थपूर्ण जीवन प्रतिदिन के शालीन और दयालु कार्यों का समन्वय होता है, जो कि धीरे धीरे एकत्रित होकर जीवनधारा को महान बना देते हैं। हर एक व्यक्ति जिसे आप जीवन में मिलते हैं, वह या तो कोई आपको सीख देता है और उसकी अपनी कोई कहानी होती है। हर वह इंसान जिसे हम अपने दिन के अक्षणों में मिलते हैं, वह हमें अपनी भावनाओं और आदर को प्रचुर मात्रा में प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है, जो आपकी हमारी मानवता को परिभाषित करता है। क्यों नहीं आप अपने व्यक्तित्व को खोए बिना पूरा दिन एक ऐसा कार्य करते हुए बिताए जो आपके आसपास की दुनिया को सुशोभित कर सके। मेरे अनुसार अगर आप एक दिन में एक भी इंसान के चेहरे पर मुस्कान ला सके या किसी अजनबी के मन को प्रोत्साहित कर सके, तो आपका जीवन एक उपयोगी जीवन है। सरल भाषा में कह सकते हैं कि दया भाव वह किराया है जो हमें इस ग्रह पर रहने के लिए किराए स्वरूप देना चाहिए। अपनी दयालुता को अजनबियों पर प्रकट करने के लिए आपको अधिक सृजनात्मक होने की आवश्यकता है। आपके पीछे होने वाली कार की चुंगी का भुगतान अदा करना, पगडंडी पर चलने वाले किसी असहाय को अपनी जगह दान कर देना और दूसरों से चल पहले उनका अभिवादन करना, जैसे कई बढ़िया तरीके हैं जिनसे शुरुआत की जा सकती है। हाल ही में द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी की एक पाठिका ने मुझे वाशिंगटन स्टेट से एक पत्र लिखा। उसने लिखा था, मेरा उसूल है कि मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा उन लोगों के साथ बांटती हूँ जिन्होंने मेरे आध्यात्मिक पथ पर मेरी मदद की है। कृपया $100 के इस चेक को मेरी शुभकामनाओं और आशीर्वाद के साथ स्वीकार करें। मैंने तुरंत उनकी उदारता बदले में अपने एक कार्यक्रम का ऑडियो टेप उतार स्वरूप भेज दिया, जिससे उन्हें अपनी भेजी हुई भेंट का उपयुक्त मूल्य प्राप्त हो जाए। उनकी यह भावना दयालुता और निष्कपट स्वभाव की महत्ता की शिक्षा देती है। अध्याय 3। अपना दृष्टिकोण बनाए रखिए। एक पुरानी कहानी के अनुसार, एक दिन एक व्यक्ति को अस्पताल के कमरे में किसी गंभीर बीमारी के साथ लाया गया, जहां एक और मरीज खिड़की के पास की शैया पर आराम कर रहा था। धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो गई और खिड़की के पास वाला रोगी रोज़ खिड़की से बाहर देखता और उसके बाद कुछ घंटे वह अपने बीमार साथी को बाहर की दुनिया की सजीव व्याख्या करते हुए बताता। किसी दिन वह अस्पताल के दूसरी तरफ के बगीचे में लगे हुए वृक्षों की हवा के झोंकों के साथ झूमने की सुंदरता के बारे में बताता था, और किसी दिन वह अपने दोस्त का मनोरंजन उन लोगों की एक बात बताकर करता जो अस्पताल के सामने से निकल रहे होते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, वह रोगी जो बिस्तर से बिल्कुल नहीं उठ पाता था, वह अपने दोस्त के द्वारा बतलाए जाने वाले अद्भुत दृश्यों को न देख पाने की असमर्थता से विचलित हो उठा। परिणाम स्वरूप वह उसे नापसंद करने लगा और धीरे धीरे उसकी नफरत तीव्र घृणा में बदल गई। एक रात खिड़की के पास वाले मरीज को खांसी का दौरा पड़ा और उसने सांस लेना बंद कर दिया। सहायता बुलाने के लिए बटन दबाने के बजाय दूसरा मरीज पड़ा रहा। दूसरी सुबह वह रोगी जिसने अपने मित्र को खिड़की से झांकते हुए दृश्यों का ब्यौरा देकर बहुत सी खुशी दी थी, वह मृत घोषित कर दिया गया और अस्पताल के उस कमरे से बाहर भेज दिया गया। दूसरे मरीज ने जल्दी ही अपना बिस्तर खिड़की के पास लगाने का निवेदन किया, जिस पर वह अस्पताल की सेविकाओं ने तुरंत अमल किया। परंतु जैसे ही उसने खिड़की के बाहर के दृश्य को देखा, बाहर के दृश्य ने उसे हिला कर रख दिया। खिड़की के सामने ईंटों की बनी हुई ठोस दीवार थी। मृत मित्र ने उसके मुश्किल समय को थोड़ा खुशहाल बनाने के लिए काल्पनिक दृश्यों का एक जाल बुना था, जो कि उसके दयालु स्वभाव को दर्शाता था। उसका यह आचरण उसके स्वार्थहीन प्रेम का सबूत है। यह कहानी मैं जितने बार इसके बारे में सोचता हूँ, मेरे अपने दृष्टिकोण को एक नई दिशा मिले जाती है, अधिक परिपूर्ण और प्रसन्न जीवन जीने के लिए हमें मुश्किल परिस्थिति में अपने दृष्टिकोण को लगातार परिवर्तित करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या इस नकारात्मक स्थिति का सामना करने का इससे बेहतर और विवेकपूर्ण तरीका हो सकता है? दुनिया में भौतिक शास्त्री स्टीवन हॉकिंग के अनुसार हम एक अत्यंत छोटे तारे के एक छोटे से ग्रह पर रह रहे हैं जो खरबों तारा पुंजों से घिरा हुआ है। तो इस दृष्टिकोण के लिए आपकी क्या राय है? इस सूचना के बाद आपको क्या लगता है कि आपकी वह परेशानियां जो आप झेल चुके हैं और जिन चुनौतियों का सामना आप फिलहाल कर रहे हैं, क्या वे सही हैं? क्या वे सही में उतनी गंभीर हैं जितना आप सोच रहे हैं? हम इस ग्रह पर बहुत कम समय के लिए आते हैं। अगर पूरी तरह देखा जाए तो हमारी जिंदगियां अनंत काल की कायनात पर कुछ बूंदों के समान है। अतः विवेकपूर्ण तरीके से इसका स्वाद लेकर इसका सफर को आनंददायक बनाइए। अध्याय 4, दृढ़ प्रेम का अभ्यास करिए। आत्म अनुशासन उच्च सफलता और अर्थपूर्ण जीवन की सुनहरी कड़ी है। अनुशासन हमसे वह बातें करवाता है जिन्हें हम दिल से जानते हैं कि हमें करना चाहिए, पर हमारा मन उन्हें करने नहीं देता। आत्म अनुशासन के बिना न आपके लक्ष्य स्पष्ट हो पाएंगे, न आप समय का उपयुक्त तरीके से प्रयोग कर पाएंगे, न लोगों से अच्छा व्यवहार कर पाएंगे, न मुसीबतों के पलों का सामना कर पाएंगे, न आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएंगे और न ही सकारात्मक दृष्टिकोण अपना पाएंगे। मैं आत्म अनुशासन की आदत को दृढ़ अनुराग के नाम से बुलाता हूँ, क्योंकि अपने आप से शक्ति करना वास्तव में अधिक प्रेम की भावना है। खुद से शक्ति करके आप स्वैच्छिक रूप से जीवन व्यतीत करेंगे। आप अपना जीवन अपनी बनाई हुई शर्तों पर जिएंगे और उस पत्ते की तरह प्रतिक्रिया नहीं करेंगे जो बहुत पानी और हवा की दिशा का रुख ले लेता है। जैसा कि आपने व्याख्यान में बताता हूँ कि आप जितनी ज़्यादा शक्ति अपने साथ दिखाएंगे, जीवन आपको उतना ही आसान लगेगा। आपके जीवन की उत्तमता आपके चुनावों और निर्णयों पर निर्भर करती है। इस श्रेणी में भी यह शामिल है कि आप किस नौकरी में जाना चाहते हैं, आप कौन सी किताबें पढ़ते हैं, आप कितने बजे उठते हैं और वे विचार जिन पर आप सोच विचार करते हैं। जब हम अपनी समस्त मानसिक शक्ति को अपने सही चुनावों की ओर जुटा देते हैं और आसान चुनाव की उपेक्षा करते हैं, और तो यही हमारे जीवन की बागडोर को नियंत्रण करने में हमारा साथ देता है। सक्षम और संपूर्ण लोग आसान और आरामदायक काम करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। उनमें अपने दिल की आवाज़ सुनने की हिम्मत और उसे करने की बुद्धिमत्ता होती है। यह आदत उन्हें महान बना देती है। एक सफल इंसान की मनसा में वह सब करने की होती है जिसे सब असफल इंसान नहीं करना चाहता। निबंधकार और विचारक E.M. ग्रे के अनुसार वे उन्हें ज़रूरी होने पर भी नहीं करना चाहते हैं। उनकी नापसंदगी उनके लक्ष्यों की कमजोरी के अधीन होती है। 19वीं सदी के अंग्रेजी लेखक थॉमस हेनरी हक्सले ने यही निष्कर्ष दिया है, शायद शिक्षा का सबसे अधिक मूल्यवान परिणाम उस योग्यता में है जो हमसे वह करवाती है जो हमें करना चाहिए, चाहे हम उसे पसंद करें या ना करें। और अरस्तु ने इस विवेकपूर्ण बात को दूसरे ढंग से कहा है, हम जो भी सीखते हैं वह वास्तव में अनुभव करके सीखते हैं। उदाहरण के लिए, इमारत बनाने की कारीगरी इमारत बनाने से आती है। वीणा बजाने का अभ्यास वीणा वादक बनते हैं। उसी प्रकार सत्य का पालन करने से हम निष्पक्ष बनते हैं। उद्देश्यों के पालन से हम आत्म अनुशासन सीखते हैं और साहस के कार्य करके हम वीर बनते हैं। अध्याय 5, दैनिक पत्रिका बनाए। अपनी दिनचर्या का रोजनामचा बनाना अपने आप में आत्म उन्नति का सबसे बढ़िया तरीका है। रोजमर्रा के आपके वे अनुभव जिनसे आपने कुछ सीखा है, वे आपको हर दिन के साथ अधिक अकलमंद बनाते हैं। आप में आत्म सजगता का विकास होगा और आप कम गलतियां करेंगे। दैनिक पत्रिका आपके अभिप्राय स्पष्ट करती है जिनसे आप वास्तव में महत्वपूर्ण बातों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। दैनिक सारणी रोज आपको अपने आप से वार्तालाप करने का मौका देती है। आपको इस दुनिया में कुछ गंभीर चिंतन करने पर मजबूर करती है, जो कि वह क्रिया है जिसे देखने को हम आजकल तरस जाते हैं। यह आपकी विचारधारा को स्पष्ट प्रदान करेगी और आपको और अधिक स्वैच्छिक और चेतन रूप से जीने में मदद देगी। इसके अलावा यह आपको एक केंद्र स्थान देती है जहां आप अपने महत्वपूर्ण विषयों पर अपने अंतर निरीक्षण का कागजी प्रमाण रख सकते हैं और सफलता के उन जरूरी मंत्रों को लिख सकते हैं जो आपके लिए उपयोगी साबित हुए हैं। और उच्च स्तर के व्यावसायिक, व्यक्तिगत और आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण बातों पर अमल करने का वादा कर सकते हैं। यह व्यक्तिगत रोजनामचा आपको अपनी कल्पना को उड़ान देने और अपने सपनों को परिभाषा देने के लिए निजी स्थान प्रदान करता है। दैनिक कार्यकारिणी और दैन नंदिनी में फर्क होता है। दैन नंदिनी में आप घटनाओं का विवरण लिखते हैं और दैनिक सारणी में आप घटनाओं का विश्लेषण करके उनका मूल्यांकन करते हैं। रोजनामचा आपको यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं और जो आप कर चुके हैं उससे आपने क्या सीखा है। दैनिक सारणी में लिखना आपके आत्म विकास और विवेक को शिक्षा देता है जिससे आप अपने अतीत के अनुभवों का अपने बेहतर भविष्य के निर्माण में सदुपयोग कर सके। चिकित्सा विभाग के शोधकर्ताओं ने यह पाया है कि एक निजी रोजनामचे में 15 मिनट भी प्रतिदिन लिखना आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है, आपके शरीर की रोग को आतंकों से लड़ने की शक्ति और अभिवृत्ति को बरकरार रख सकता है। याद रखिए, अगर आपकी ज़िंदगी विचार करने के काबिल है तो वह लिखने के काबिल भी है। अध्याय 6, ईमानदारी के मंत्र का विकास करिए। हम झूठे वादों की दुनिया में रह रहे हैं। हम उस वक्त से गुजर रहे हैं जब लोग अपने ही दिए हुए वचन को हल्के रूप में लेने लगे हैं। हम यह जानते हुए भी कि हमारे पास समय नहीं है, फिर भी अपने मित्र को खाने पर बुलाने का प्रस्ताव रखते हैं। हम सहयोगी को नई किताब पढ़ने के लिए देने का वादा करते हैं, यह जानते हुए भी कि हम अपनी पुस्तकें किसी को उधार नहीं देते। और हम अपने आप से वादा करते हैं कि हम इस वर्ष अपने आप को उचित रूप में ढालेंगे, अपने जीवन को सरल बनाएंगे और अपने जीवन के ढंग में कोई आवश्यक बदलाव लाए बिना इस लक्ष्य को पाने की कोशिश करेंगे। ऐसी बातें कहना जो सही मायने में कोई महत्व नहीं रखती हैं, बोलते रहने से यह हमारी आदत का हिस्सा बन जाती है। मगर असली परेशानी तो तब होती है जब आप अपना वचन तोड़ते हैं तो आप दूसरों का विश्वास भी खो देते हैं। जब आप अपनी साख खोते हैं तो विश्वास का धागा भी टूट जाता है, और विश्वास के बंधन को तोड़ना टूटे हुए रिश्तों की ओर ले जाता है। एक ईमानदारी के तत्व ज्ञान का विकास करने के लिए आपको उन झूठों का हिसाब रखना शुरू कर देना चाहिए जो आप एक हफ्ते के समय में बोलते हैं। आप अगले 7 दिनों के लिए सत्य का व्रत रखिए और कसम खाइए कि दूसरों के साथ अपने कारोबार में आप सत्य का पालन करेंगे और साथ ही खुद के साथ भी ईमानदार रहेंगे। हर बार जब आप सही काम करने से चूक जाते हैं तो आप अपने गलत काम करने की आदत को बढ़ावा देते हैं। हर बार जब आप सच नहीं बोलते हैं तो आप झूठ बोलने को बढ़ावा देते हैं। अपना दिया हुआ वादा पूरा करिए, अपनी बात पर अटल रहने वाला व्यक्ति बनिए, न कि सिर्फ बातें और कार्य नहीं। जैसा कि मदर टेरेसा ने कहा है, बातचीत कम होनी चाहिए, उपदेश देने और सामाजिक मेलजोल का एक ही स्थान नहीं हो सकता। फिर आप क्या करें? एक झाड़ू उठाइए और किसी का घर साफ करिए, वही अपने आप में एक अच्छी शुरुआत है।